15 नंबर के रजिस्टर में 103 पेज 7/2/88 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी संतस के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धियोग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व सुदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को ये भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं। राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते नहीं। तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। कहाँ? ऐसे नहीं कि सतयुग में ही सुख के दिन आवेंगे, लेकिन संगम युग में भी सुख के दिन बीतने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थ किस बात के लिए कर रहे हो? राजाई का पुरुषार्थ कर रहे हो और ऋषि भी हो, अर्थात पवित्र भी हो। तो जो पवित्र रह करके राजाई का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, उनको अनुभूति यहाँ क्या होनी चाहिए कि हमें यहाँ भी सुखी है। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो यहाँ भी सुखी होने चाहिए। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। क्या घड़ी घड़ी भूल जाने से कि हम राज ऋषि हैं? बच्चे जानते हैं हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सदा सुख का वर्षा का मतलब जैसे हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा षष्ठ रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती सुख का पार्ट बजाती, तो ऐसे ही हम बच्चे भी नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो कौन सा वर्षा ले रहे हैं? अल्पकाल के सुख का नहीं, सदा सुख का। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी अनुभव कैसा करना चाहिए? सदा सुख का अनुभव करना चाहिए। तो सिवाय परमपिता परमात्मा के ऐसा सदा सुखी कोई बना ही नहीं सकता। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। किसको याद करते हैं? निराकार बाप को याद करते हैं, क्योंकि जो साकार होगा, साकारी स्टेज वाला होगा, देह भान की स्टेज वाला होगा, वो तो सुखी रह नहीं सकता। क्योंकि देह भान से पांच विकार और पांच विकारों से दुख जरूर आते हैं। और रही आकार की बात, तो आकारी फरिश्ते होते हैं, सूक्ष्म वतनवासी। उन फरिश्तों की यादगार भारत में नहीं है। भारत में फरिश्ते नहीं पूजे जाते। कौन पूजे जाते हैं? देवताएं पूजे जाते हैं। तो उनको पूज्य बनाने वाला भी वही निराकार परम पिता परमात्मा। तो निराकार बाप को ही याद करते हैं, बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। ये कलयुगी नरक की दुनिया बदल स्वर्ग होगा। हैविन की स्थापना, हैल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठे राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का हो चाहे हेवन का हो, राजयोग नहीं सिखला सकता। क्या राजयोग सिखाना, राज ऋषि बनाना, नर से नारायण बनाना, सदा सुख का वर्षा प्राप्त कराना, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं है। अगर मनुष्यों का ये काम होता तो परमात्मा को आकर के राजयोग इस सृष्टि पर सिखाने की दरकार नहीं होती। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, वो ही सुदर्शन चक्रधारी है। हम आत्माओं को सत्य चक्र की जो नॉलेज है वो देवताओं को भी नहीं है। सुदर्शन चक्र कृष्ण को अथवा विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, और कृष्ण अथवा विष्णु का रूप देवताई संपन्न रूप है, तो संपन्न रूप की यादगार कायम होती है, अधूरे रूप की यादगार नहीं बनती। क्योंकि तुम ब्राह्मण नीचे ऊपर होते रहते हो, अभी अभी सुखी, अभी अभी दुखी। तो ये सुदर्शन चक्र निशानी है फाइनलिटी की। आज तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खा करके गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? सुदर्शन चक्र तो स्थाई चाहिए, इसलिए फिर विष्णु को दिखाते। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। क्या गुह्य बात क्या हो इसमें? कि मनन चिंतन मंथन का चक्र उसी की बुद्धि में चल सकता है जो सदा अटल, अचल, अखंड और अडोल हो। नीचे ऊपर अवस्था होने वाला न हो, अभी अभी जन्म मरण के चक्र में आने वाला न हो, निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्र में आने वाला न हो, जहां भी विष्णु का मंदिर हो अथवा कोई भी सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर के तुम समझा सकते हो। कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र देते हैं, लेकिन राधा कृष्ण के युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते। वास्तव में कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। फिर जब कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नहीं है तो कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दे दिया? हाँ, संगम भी कृष्ण की यादगार है, सतयुगी राधा कृष्ण की कोई यादगार नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण कुल भूषण है, देवताएं नहीं। जिनको परमपिता परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वही जब देवता बनते हैं तो उनको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। इनको जो ब्राह्मण सो देवता बन जाते, क्योंकि देवताओं के गुण अलग। क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, तो वहां तो ये ज्ञान ही नहीं होता। वहां ये मालूम होता तो तुम राजा ही कर नहीं सकते थे। यही चिंता लग जाए तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि अब घबराओ मत, तुमको माया पर जीत पानी है। माना माया पर जीत अभी पाई नहीं है, लेकिन पानी है तो सुदर्शन चक्रधारी बने हैं या नहीं बने हैं? सुदर्शन चक्रधारी बने ही नहीं। जब स्व का दर्शन हो, स्व माना आत्मा के 84 के चक्र का दर्शन हो, बुद्धि में ये चक्र फिरने लगे, वो 84 का चक्र दिखाई देने लगे, तो कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी। और माया ऊपर नीचे करती रहती है तो इससे साबित है कि अभी प्योरिटी की पूरी पावर नहीं आई है, राज ऋषि नहीं बने। लेकिन धीरज धरो, किस बात का कि पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो जैसे ही पूरा होगा वैसे ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनना जरूर है। माया के तूफान जरूर आएंगे, विघ्न पड़ेंगे। क्यों विघ्न पड़ेंगे? इसका इलाज है योग में रहो। विघ्न इसलिए पड़ेंगे क्योंकि हम परमात्मा से दूर हुए, वियोगी बने, भोगी बने, तो माया जरूर विघ्न डालेगी। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ करके योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। किस जन्म की आयु? सत्यु की। सत्युग त्रेता में तो लंबी आयु होती ही है, लेकिन यहाँ संगम युग में भी आयु बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेते रहे। अंत तक माना जब तक संगम युग है। संगम युग कब तक है? 100 साल तक संगम युग है, तो अंत तक वर्षा लेते रहेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं योगी भव। इस बात पर श्रद्धा पैदा करनी है कि योग से जब विश्व की बादशाही मिल सकती है, स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, तो शरीर का रोग नहीं ठीक हो सकता क्या? हो सकता है। तो योगी भव, लेकिन मेरे को निरंतर याद करो, अर्थात मेरी याद में कोई अंतर न डालने पावे, बुद्धि में मन में कोई दूसरे की याद न आने पाए, ऐसी स्थिति बनाओ। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पावेंगे। इसलिए बाप कहते हैं योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कौन से कर्म? विकर्म। वि माने विपरीत और कर्म माने कर्म। ऐसे कर्म जो हमने परमात्मा की मत के विपरीत कर्म किए हैं। परमात्मा कौन सी मत देता है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है आत्मिक स्थिति में रहने की, आत्माभिमानी बनने की। और हमने 63 जन्म में क्या किया? अपने को देह समझा और दूसरों को देह के रूप में देखा। ये रंग है, ये राजा है, ये नीचे है, ये ऊंच है, आत्मा के रूप में नहीं देखा। तो देह भान में रहने से ये विकर्म बनता है और आत्माभिमानी रहने से अकर्म होता है, कर्म अकर्म हो जाता। तो देवताएं किस स्टेज में रहते? आत्माभिमानी स्टेज में रहते। और मनुष्य देहाभिमानी में रहते। तो मनुष्यों को राजयोग सिखाया जाता है मनुष्य से नर से फिर से नारायण बनने के लिए। तो वो विकर्म तब विनाश होंगे जब निरंतर याद में रहेंगे। तो अभी तक हम किसकी याद में रहे? 63 जन्म से देह अपनी याद आई और दूसरों की देह याद आती रही। अभी भी अगर देखें, चेकिंग करें तो सुबह से लेकर शाम तक और रात में स्वप्न में भी याद कौन आते हैं? अगर देहधारी याद आते हैं तो जरूर अभी हम सदासन चक्रधारी नहीं बने। सदासन चक्र तब तक घूम नहीं सकता कांस्टेंट लगातार जब तक देहभान बुद्धि में है। तो विकर्म विनाश होंगे जब तुम निरंतर याद करेंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं। क्यों कहेंगे? क्योंकि विनाश जल्दी हो जाएगा और हमने तो पुरुषार्थ पूरा किया नहीं। हम अभी सदासन चक्रधारी बने नहीं। जो 84 का चक्र है उस चक्र को हमने आपने बुद्धि से अभी दर्शन नहीं किया कि हमारी आत्मा का 84 जन्मों में कैसा कैसा पाते और विनाश हो जाए तो क्या होगा? तो हमारे पार्ट का भी विनाश हो जाए। पार्ट का विनाश कैसे होता है? आत्मा का पार्ट विनाश हो सकता है क्या? हाँ, कम जन्म लेने वाली आत्मा रह जाएंगी। क्योंकि कोई आत्मा तो सत्यु के आदि में उतरती है, वो तो बहुत श्रेष्ठ होती है। कोई सत्यु के मध्य में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में। तो जो कलयुग में आत्माएं उतरेंगी वो तो जरूर बस एक आदमी बाकी जो कलयुग में आत्माएं उतरेंगी वो तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाने वाली सामान्य आत्माएं हो गई। उन आत्माओं की तो बाबा कभी कभी गिनती भी नहीं करते। 550 करोड़ मनुष्य बताते, फिर कभी बताते हैं 600-700 करोड़ भी होंगे। तो 550 करोड़ से ऊपर जो 600-700 करोड़ बताते हैं वो किस लिस्ट में आए? वो मक्खी मच्छरों की लिस्ट में आ गए। अभी अभी आए रंगमंच पर और अभी अभी उन्होंने अपना पार्ट पूरा कर लिया, दुनिया का विनाश हो गया। तो क्या पार्ट हुआ? तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में चले जाएं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। किस बात का? कि हमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जब हमारा पुरुषार्थ पूरा हो, हम कर्मातीत स्टेज को पाएं, माया हमारे कार्य में विघ्न न पैदा करे, हमारा पुरुषार्थ संपन्न स्टेज पर पहुंचे, तब विनाश होगा। विनाश कब तक रुका हुआ है? जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। तो ये जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि अब शरीर छोड़ फिर जाए पढ़ाई पढ़ सकेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं है। अब अगर शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ करके बच्चा बनेंगे, तो बच्चे की बुद्धि में तो उतनी नॉलेज नहीं बैठ सकती। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा और बालक भी नहीं बन सकेगा। बालक का मतलब हाँ, समझदार बुद्धि ही नहीं बन सकेगी, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सब का विनाश होने वाला है। जल्दी मरे ये वो ही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती होगी। क्या कोई कोई ज्ञान में भी चलने वाले बहुत तंग हुए पड़े हैं? सदा सुख तो क्या, सदा दुख का अनुभव करते रहते हैं। मुख से कहते हैं हमको भगवान बाप मिला हुआ है, और भगवान मिला हुआ है फिर दुखी क्यों रहते? जैसे बाबा प्रश्न करते हैं, हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है तो हम दुखी क्यों हैं? करोड़पति का बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? वो तो हो नहीं सकता। तो जरूर कोई कर्म भोग है जो माया तंग करती है, इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ, बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप आकर सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। क्या इस दुनिया में ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो रूहानी यात्रा पर न जाए? रूहानी यात्रा माना अपन को देह न समझना, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझना, दूसरे को भी बिंदु आत्मा के रूप में देखना। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा कि नई दुनिया की आबादी 9 लाख सितारों की होगी तो उन्हीं को वापस ले जाएगा आत्म के स्टेज वाला बनाई के? नहीं, दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको आत्मिक स्टेज में वापस जाना पड़ेगा। तो जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, ये तो आत्मा परमात्मा का मेला है। वो कुंभ का मेला किसका होता है? मनुष्यों का मेला होता है नदियों के संगम पर, और ये कुंभ का मेला कोई नदियों का संगम का मेला नहीं है। उन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो मेले में लाख लगते हैं, सम्मेलन लगते हैं, तो कौन मिलते हैं आपस में? क्या परमात्मा का मिलन मेला होता है? नहीं, मनुष्य मनुष्य आपस में मिलते हैं, ज्ञान नदियां आपस में मिलती हैं, तो उससे कोई कल्याण नहीं हो सकता। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। माना आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्माएं और परमपिता परमात्मा, वो आपस में मिलते हैं। दूसरा भी बाप स्वयं पंडा बन करके लेने आए हैं, आत्माओं को वापस ले जा देंगे परम धाम, उनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी। किन की पिछाड़ी?
आत्मिक स्टेज में जो सदा रहने वाला है उस निराकारी सदा शिव के साथ सब आत्माएं वापस जावेंगी 500 करोड़। परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे, प्रलय हो जाए तो फिर ये भारत खंड ही न रहे। प्रलय लीन मन तटस्थ रूप से सब कुछ लीन हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं दुनिया में, कभी बीज का नाश होता नहीं। तो ये भारत खंड तो अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। क्यों और खंडों में बहुत क्यों नहीं रह जाते? इस भारत खंड में ही क्या बात है जो बहुत रह जाते हैं? क्योंकि भारत में भगवान आते हैं। क्यों दूसरे खंड में भगवान क्यों नहीं आते? वहां के जानवर रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते क्या? हाँ, भारत में जितना पवित्रता का गायन है, कन्या माताओं में जितनी प्योरिटी है, उतनी प्योरिटी दूसरे देश की कन्या माताओं में नहीं होती। फट से तलाक देना, फट से दूसरी शादी कर लेना, और ये भारत वर्ष में बुरा बुरा माना जाता है। तो यहाँ तो बहुत रह जाते हैं। सत्युग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी, कलयुग विनाश हो, सत्युग स्थापन होने में बीच का 50-60 वर्ष का टाइम लगता है। क्या कितना टाइम बुरा हो गया है? पचास से ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा हो गया है? 56वां साल चल रहा है। अब कितने साल रह गए 60 साल में? 4 साल। तो 4 साल में कलयुग विनाश हो, सत्युग की स्थापन हो जाएगा, पक्का निश्चय है? सत्युग की संगठन बन जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया का। अच्छा, वो संगठन कितना बड़ा होगा? 16,000 3-4 साल के अंदर क्लियर हो जाएंगे। पूरी राजधानी माना? राजधानी कौन सी राजधानी माना? मध्य प्रदेश की राजधानी कि कर्नाटक की राजधानी? कहाँ की राजधानी? भारत की राजधानी दिल्ली। अच्छा, तो पत्थर की ईंटों वाली वो राजधानी पहले स्त्रियम बनेगी या चैतन्य राजधानी पहले स्त्रियम होगी? पत्थर की पहले स्त्रियम होगी। पत्थर वाली राजधानी 60 वर्ष में चैतन्य स्थापन हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगा, हीरे मोती जवाहरातों के महल तैयार हो जाएंगे, है? पूरी राजधानी कंप्लीट हो जाएगी। अरे, तो 7 साल के अंदर कौन सी राजधानी के लिए बोला होगा, है? अब इस स्थूल की तो बात ही नहीं। इस स्थूल तो तब संभरेगा जब आत्मा जो चैतन्य है वो संभल जाए। ये तो 108, 109 या 16,000 की तो बात नहीं थी, बात तो ये कि पूरी राजधानी स्थापन होगी 7 साल में। तो राजधानी कौन सी पूरी, पहले चैतन्य या जड़? हाँ, चैतन्य राजधानी की बात है। चैतन्य राजधानी तो अभी भी स्थापन है।
नहीं, 100%
चैतन्य जिले की बात कर रहे हैं ना? चैतन्य जिले
में परिवर्तन तो परसेंटेज होते हैं, लेकिन 100% 100% होगी तो 60 साल।
तो 16,000 कब होगी? अरे, जब बीज सुधरेगा तो वृक्ष भी सुधर जाएगा, जब धरणी सुधरेगी तो वृक्ष भी तैयार हो जाएगा। बीज और धरणी के ऊपर सारा मदार होता है। तो 50-60 वर्ष का टाइम मिलता है कलयुग विनाश हो सतयुग स्थापन होने में। सतयुग में क्या खास बात और कलयुग में क्या खास बात? कलयुग का मतलब ही है कल है कलेश का युग। आज घर घर में क्या लगा पड़ा है? कल है कलेश। कोई छोटी सी भी बात होगी उसमें भी क्या होगा? कल है कलेश। वो कहेंगे नहीं ऐसे करो, वो कहेंगे क्या नहीं ऐसे होना चाहिए, वो कहेंगे तुम बुद्धू, वो कहेंगे तुम बुद्धू। एक दूसरे की लड़ाई होती रहेगी। तो घर घर में जो मिट्टी के चूल्हे हैं, माना देह अभिमान भरा पड़ा है, वो देह अभिमान क्या होगा? जब तक नष्ट नहीं होगा और पूरा अनुशासन नहीं बनेगा एक परिवार का, तब तक परिवार की इकाई जब तक तैयार नहीं होगी तब तक स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। इसलिए बाबा ने दिल्ली के ऊपर इतना जोर दिया है। दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन कब होगा? जब दिल्ली राजधानी का परिवर्तन होगा। तो वो समझ लेते हैं कोई जड़, हाँ उन्होंने पत्थरों की नई दिल्ली फटाफट बना दी अंग्रेजों ने, हैं? हाँ भारत भी दिल्ली के ऊपर आधारित है और भारत पे बाप आधारित है। बाप भारत में आते हैं, आए भारत में भगवान। तो पचास साठ वर्ष का टाइम मिलता है बीच में कलह कलेश का युग विनाश होने में और नई दुनिया सत्य युग, झूठ युग नहीं सत्य युग। अगर दो में लड़ाई होती है तो लड़ाई किस बात पर होती है? दोनों अपने को सत्य साबित करने की कोशिश करके। दो पार्टियों में लड़ाई कब होती है कि दोनों कहते हैं हम सच्चे? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर एक सच्चा है और एक झूठा है। तो सतयुग स्थापन होने का मतलब क्या हुआ? हाँ कि दोनों में 15 नंबर के रजिस्टर में 104 पेज 788 का प्रातः क्लास दूसरे पेज का आदि। तो नई दुनिया में बहुत थोड़े रह जाएंगे। 50-60 वर्ष जब पूरा होता है तो कलयुग विनाश और सतयुग स्थापन हो जाता है। लेकिन कहाँ? 500 करोड़ की दुनिया की बात बताई, 9 लाख की दुनिया की बात बताई, 16,108 मनुष्यों की बात बताई नहीं, 108 की बात बताई नहीं। चैतन्य राजधानी जो कि स्थिरियम नहीं है, निश्चय अनिश्चय वाली है, जैसे पीपल पात सरस मन डोला, मन मन आत्मा की शक्ति, जैसे परमात्मा की तीन शक्तियां, मन रूपी संकल्प शक्ति ब्रह्म, तो वो मन रूपी घोड़ा जो हिलता डुलता है वो स्थिरियम हो जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, पक्का राज ऋषि, स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र कभी हाथ से गिरने वाला न हो, ऐसी ज्ञानी की स्टेज हो जाए, सुख स्वरूप स्टेज, सदा सुखमय। हम किस बाप के बच्चे हैं? क्या है उसका टाइटल? आनंद का सागर, सुख का सागर। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सागर ही होने चाहिए ना। तो सदा सुखमय स्टेज हो,
जो भी देखने सुखन सुनने वाले हों उनको दुख की तेज नजर ना आए, तो शुरुआत कहाँ से होगी? कहीं से तो शुरुआत होगी। तो जहाँ से शुरुआत हो तो समझ लो वहीं से पहली इकाई शुरू हो गई सतयुग की। सतयुग वहां स्थापन हुआ उस परिवार में, उस कुटुंब में, और कलयुग का विनाश हुआ। तो बताया इसमें थोड़े रह जाते हैं, नई दुनिया स्थापन होगी तो ऐसे नहीं ढेर होंगे। कितने होंगे? बहुत थोड़े। जो नए सिरे अपनी राजधानी बनाते हैं, बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, सतयुग त्रेता के संगम को या त्रेता द्वापर के संगम को या कलयुग द्वापर के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कल्याणकारी संगम युग सिर्फ कलयुग का अंत, कलह क्लेश की दुनिया का अंत और सत्य सच्ची दुनिया जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, मत ऐक्य हो, एक मत हो, अनेक मत न होने पाए, ऐसी इकाई जहां से भी शुरुआत हो जाए तो समझ लो वहीं से सतयुग की सूत्रपात हो गया। तो ये पुरुषार्थ का बहुत थोड़ा समय है। कितना थोड़ा समय रह गया? समय भी बता दिया 50-60 वर्ष। तो इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग? पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो उत्तम आत्माएं हैं उनके प्रत्यक्ष होने का युग। अव्वल नंबर फर्स्ट आत्मा कौन? जो सच रूपी वृक्ष का बीज है, बाप है, वो कौन? वो प्रत्यक्ष हो। तो पुरुषोत्तम युग हुआ। सेकंड नंबर आत्मा कौन? तो ऐसे वो नंबर डिक्लेयर होते जाए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए। ये नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। कौन सी नॉलेज? कि सुख की दुनिया कहाँ से शुरू होगी और दुख की दुनिया कहाँ से शुरू होती है। दुख भी जरूर एक से शुरू होता है, एक दो से, और सुख भी जरूर एक दो से ही शुरू होता है। इसलिए बोला है एक के पतित होने से सात पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सात सात पावन बन जाते हैं। तो ये नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अपने भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सब की पूजा करते रहते थे, जो आया वह उसकी पूजा करने लगे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं जो बिरला व्यापारी करे। सब व्यापारी ऐसी ऐसा धंधा नहीं करेंगे। बिरला व्यापारी, बिरला माना कोई कोई, जैसे कोई हुनर सिखाना होता है या सीखना होता है, ये भी है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर के पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सात सेंटर्स के बच्चे होते हैं। क्या रोज पढ़ाते हैं तो बाप के सामने सात बच्चे कैसे होते होंगे? सब सेंटर्स के बच्चे कैसे आ जाएंगे? हैं? माना सेंटर्स माना केंद्रीय स्थल, सेंटर माना जहां सब आकर के सेंटर में इकट्ठे हो जाएं। तो दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं के जो बीज हैं, वो ही हैं सेंटर्स। सब सेंटर्स का बीज रूप कौन सा सेंटर बताया? अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। स्वामीनारायण मंदिर का मिसाल दिया कि वहां स्वामीनारायण के मंदिर में 108 मंदिर बने हुए हैं। ढेर पैसा आता होगा, मिलता तो सब स्वामीनारायण को ही होगा, तो वो यादगार कहाँ की है? यादगार तो जरूरी यहाँ की है। संगम युग पर जो बातें होती हैं, उसी की यादगार सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में चलती आती है। तो 108 बीज रूप आत्माएं जो सारे विश्व की बीज हैं, हर प्रकार की कैटेगरी की आत्माओं की बीज हैं, वो जैसे बाबा की दृष्टि में वो क्या हो गए? सेंटर। तो ये हुए चैतन्य सेंटर। तो बाप जब रोज आकर के पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे होते, भले सामने न भी हो तो भी बाप उनको अपनी बुद्धि के सामने इमर्ज कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। माया तुमको विघ्न डालती होगी, मेरे को विघ्न नहीं डालती है। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को न भुलाना, मानो कि बाबा को भी भूल होती है, बाबा भी भूल भुलैया में आ जाता है, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है, तो मैं भूलूंगा कैसे? मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा अपना कर्म बंधन है कि बाप ने बांधा है कर्म बंधन। कर्म किसने किए 63 जन्मों में? हमने पाप कर्म किए तो हमको ही भोगना होगा ना, कि परमात्मा आकर के भोगेगा? तो ये तुम्हारा कर्म बंधन है, इसमें बाप क्या करे? और वो भी कर्म बंधन का मूल क्या है? देहाभिमान। तो उस मूल जड़ को ही तोड़वाए गए कि अपन को आत्मा समझो, और आत्मा की प्रैक्टिस पक्की करने के लिए संग किसका करो? परमात्मा। वो सदा आत्मा अभिमानी है, वो सदा शिव है, वो सदा कल्याणकारी है। हम तो कभी कल्याणकारी बनेंगे, कभी अकल्याणकारी भी बनेंगे, क्योंकि मनुष्य से भूल होती है, परमात्मा से तो कभी भूल होती नहीं। तो आधा कल्प तुम विकर्मी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। ऐसे ही नहीं सिर्फ हमको आत्माभिमानी बनना है उससे ही काम चल जाएगा। आत्माभिमानी तो जितने भी होंगे 33 करोड़ देवताएं, वो सब बनते ही, 500 करोड़ भी आत्माभिमानी बनते, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात है कि जो परमात्मा बाप बेहद का बाप है, तो उस बेहद के बाप का बेहद का वर्षा भी लेने वाले बने। वो बाप आकर के राजयोग सिखाता है, प्रजायोग नहीं सिखाता। दुनिया में इतने बड़े बड़े होदेदार बनते हैं, इतना पद पाते हैं, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाले भी पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तब वो ऊंच पद पाते हैं। तो इस दुनिया में इतने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको ही कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, कब सिखाई? जरूर कोई ने तो सिखाई होगी जो उनके अंदर ऐसे संस्कार आ गए। देखो बाबर के अंदर कैसे संस्कार थे, था छोटा सा सिपाही और सिपाही से क्या बन गया, भारत का सम्राट बन बैठा। तो एक ही जन्म के अंदर इतना बड़ा पुरुषार्थ उसने कैसे कर लिया, ये संस्कार कहां से भरा? जरूर संगम से भरा। तो बोला कि तुम बच्चों को सर्विस भी करनी है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे बनेगा? जब तुम दूसरी आत्माओं की सेवा करोगे तो सेवा करने से तुमको ये ऊंच पद का मेवा मिलेगा। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। कौन सा कार्ड? जिस कार्ड में एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र भी हो, लिखत भी हो, उस कार्ड से सब समझ जाएंगे तो ये किस धंधे में लगे हुए हैं। ये तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है, सबसे अच्छा है चक्कर पर समझाना कि दुनिया ये एक चक्कर है, सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर संगम के बाद सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग, फिर बीच में संगम। तो हर संगम पर परमात्मा बाप आता है और आकर के कलयुगी कलह क्लेश वाली दुनिया को पलट के नई सत्य की दुनिया, सुखदायी दुनिया बनाता है। तो कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख करके समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सत्युग आने वाला। यादगार में मनुष्य आज भी जब नया मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, तो आज भी वो सतिया का चिन्ह, स्वास्तिका का चिन्ह बनाते हैं जिसमें चार भुजाएं हैं, लेकिन बनाने वाले खुद ही नहीं जानते कि ये चार भुजाएं चार युगों की, चार युगों के चक्कर लगाने की सूचक है। सत्युग त्रेता द्वापर की, त्रेता की ये जो चार भुजाएं हैं उनमें दो भुजाएं राइट साइड की और दो भुजाएं लेफ्ट साइड की, राइट साइड की स्वर्ग की सूचक और लेफ्ट साइड की नरक की, दुख की दुनिया की सूचक। लेफ्ट हैंड में गंदा काम होता है और राइट हैंड से सब दान धर्म के अच्छे अच्छे कार्य किए जाते। तो ये भी चार भुजाएं हैं, चार युग हैं। तो चक्र पर समझाना बहुत अच्छा है, कैसा भी आदमी हो चक्र को देख करके समझ आवेगा कि बरोबर ये कलयुग है और अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियंस को भी समझा सकते हो, ये दुनिया है अब हेल नरक, और अब स्थापन होने जा रहा है हेवन, वो तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करेगा। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी मारी गई है जो अपन को नरकवासी समझते ही नहीं है। क्या ये नॉलेज को समझेंगे भी कौन? जो अपन को दुख में समझते होंगे वो समझेंगे, फिर जो सुख में समझते होंगे वो समझेंगे, जो कहते हैं हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, तो उनकी बुद्धि में ये नॉलेज बैठने वाली नहीं है। जो समझते हैं कि ये दुनिया नरक है, ये दुनिया रहने योग्य नहीं है, इससे हम तंग आए पड़े हैं, तो वो ही इस नॉलेज को लेंगे। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर अभी हम नरक में हैं। कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्गवासी कहां से हुआ, स्वर्ग है कहां अभी दुनिया में? जो स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवासी तो होंगे ही तब जब स्वर्ग स्थापन हो इस दुनिया में, अभी तो सारी दुनिया में नरक है। नरक की दुनिया में, नरक के वाइब्रेशन में मरेंगे तो अंत मते सोगते कहां जन्म लेंगे, नरक में ही जन्म ले ली, क्योंकि दुनिया का वाइब्रेशन ही नरकी है, दुखदाई वायुमंडल है। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर है, कलयुग में ही लेंगे। अभी सत्य का युग है नहीं। कोई भी मनुष्य कितना भी डंका पीटे कि हमें सच्ची बात अच्छी लगती है, हमें झूठी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके जीवन को देखो तो उसके जीवन में भी कथनी में, करनी में, मनसा में झूठ जरूर भरा पड़ा होगा। एक भी दुनिया का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है परमात्मा पार्ट को छोड़ करके, क्योंकि परमात्मा पार्ट में तो दोनों है। परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु है, वो तो जन्मने के चक्र में आता नहीं, वो तो जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शरीरधारी भी पतित, तो एक ही पतित शरीर में दो आत्माएं, एक सदाशिव और एक, हाँ, एक वो शरीरधारी देहाभिमानी। तो बोला जो कलयुग में मरेंगे वो जरूर कलयुग में ही जन्म लेंगे। अभी स्वर्ग कहाँ है? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर के समझाओ। क्यों शमशान में क्यों समझाओ? क्योंकि शमशान घाट में सबको वैराग आ जाता है, वहाँ वायुमंडल ऐसा बना हुआ है, सबकी मानसिक वृत्ति ऐसी बनी आ रही है, दुनिया क्या है, एक दिन हम भी खलास हो जाएंगे। तो सबको वायुमंडल का वो असर जो है वो उस समय पड़ता है। बिन वैराग विवेक न होई, तो वैराग का वायुमंडल जो है तब होता है जब मनुष्य को दुख मिलता है। तो ऐसे वैराग वायुमंडल में जाकर के ज्ञान समझाओ। परंतु बच्चे झट थक जाते हैं, समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म चाहते हो तो आकर के समझो, हम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है ना, तो जब स्वर्ग में चलना है तो कहाँ का वासी बनना है? हैं? स्वर्ग में चलना है तो कहाँ का वासी बनना है? नरकवासी बनना है। नरक वाले तो नरक की दुनिया में ही जन्म लेंगे। नरक में जो शरीर छोड़ेंगे वो कौन से वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगे? नरक में शरीर छोड़ेंगे। तो स्वर्गवासी बनना है तो स्वर्ग की इकाई कहाँ से शुरू होगी? संगम युग में भी वो इकाई, वो एक कौन होंगे? युगल माता पिता कोई तो होंगे इस सृष्टि के, जो एडम और ईव, आदम और हवा के नाम से गाए जाते हैं, आदिदेव आदि देवी के नाम से गाए जाते हैं। तो जो आदम और हवा हुए उनको पहचानना तो पड़ेगा, तब तो उनके वायुमंडल में पहुंचेंगे और हम भी सुखी रह सकेंगे। अगर पहुंचेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर उस वायुमंडल का असर भी नहीं पड़ेगा, दुनिया का ही असर पड़ता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है। राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद जितने भी बड़े बड़े हुए वो सब इस संग के रंग की दुनिया में लिपट गए। इस दुनिया को सुधार करके नरक को स्वर्ग कोई नहीं बना सका। तो वो तो एक परमपिता परमात्मा ही है, जो इस दुनिया के कोई दो बीज हैं जिनमें प्रवेश करके इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बना सके। तो समझाना चाहिए कि अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर के समझो, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में तो विख नहीं मिलेगा, उसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। शर्त क्या है? स्वर्ग में तो चलना चाहते हो, कहा के दोस्तों तो सब कह देंगे कि हाँ हमें भी स्वर्ग में चलना है, लेकिन करना क्या पड़े? जो विषय वासना की दुनिया है, विषय वासना का जो रग भरी हुई है वो रग त्यागनी पड़े। कैसे त्यागेंगे? तो ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल का मिसाल विजयाष्टमी के दिन छोटे बड़े सांप शिकार करते हैं। वो तो नेपाल वो हो गया, स्थूल देश का नाम, लेकिन चैतन्य में भी नेपाल है। नई पाल माना जहां नई दुनिया की पालना हो रही हो, ऐसा ब्राह्मणों का संगठन, तो नेपाल की बीज रूपात्मा हो गई। तो मिसाल है आज भी कायम कि जब अष्टमी होती है तो छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको बैठ समझाना है, किस बात का शिकार करना है तुमको, है? हाँ, दूसरों को समझाए के, वो तो अष्टमी के दिन करते हैं। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी किसकी यादगार है? कृष्ण की। कृष्ण ने क्या क्या किया? सुदर्शन चक्र घुमाया और असुरों के गले काट दिए, उन्होंने ये शिकार किया। तो वैसा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे भी क्या करते हैं? नंबर वार जरूर पहले अपना देह अभिमान नष्ट करें और फिर दूसरों का देह अभिमान नष्ट करें। ये हुआ सुदर्शन चक्र घुमाना, अर्थात अपने आत्मा की याद आ जाए, हु एम आई, मैं आत्मा कौन। तो जिन्हें अपने स्व की आत्मा की स्मृति आएगी, वो अपने से कनेक्शन रखने वाली जो दुनिया है, उन आत्माओं के देह अभिमान को तोड़ने के निमित्त जरूर बनेंगे। तो देह अभिमान को तोड़ना माना सुदर्शन चक्र से गला काटना। वो तो उन्होंने रथ का पहिया बना दिया, कि रथ का पहिए का कोई सुदर्शन चक्र बना दिया, हथियार बनाया कोई स्थूल, तो कोई हिंसक युद्ध थोड़े ही किया परमात्मा ने, न कराया। हिंसक युद्ध की बात नहीं है, कौन सी युद्ध की बात है? ये रूहानी युद्ध है, ये आत्मा का चक्र है 84 का, जो बुद्धि में फिरता रहे। तो अपने आत्मा की स्मृति जब जिसको आएगी, वो दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज पर पहुंचाएगा जरूर। तो सबको समझाना है, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। किसका किसका? शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि अब मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। मिस्त्री क्या करते हैं? मकान बनाते हैं, और नौकर तो होते ही हैं दास दासी। तो जो दास दासी की स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, उन आत्माओं को छोड़ नहीं देना है। नई दुनिया में तो सब चाहिए, क्या वहां दास दासी नहीं होंगे लक्ष्मी नारायण के? वो भी होंगे। और नई दुनिया का मकान, संगठन रूपी महल या संगठन रूपी किला बनाने वाले भी होंगे जरूर, जो प्योरिटी की पावर से संगठन का किला बनाएंगे, तो उनको भी छोड़ नहीं देना है क्या? हाँ, एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप बताए। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी जैसी आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, स्थूल शरीर, और कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके अब इंस्पिरेट करने का पार्ट बजाय रही, माना उनको उमंग उत्साह देने का कार्य बढ़ाए कर रही है, तो वो आत्माएं हुई। दूसरी वो आत्माएं जिनमें प्रवेश होता है उनका, वो हो गई प्लानिंग बुद्धि, इंजीनियर। तो ऐसे नहीं कि रुद्रमाला के जो इंजीनियर्स ग्रुप के हैं उनको ही समझाना है, नहीं, इंजीनियर कुछ नहीं कर पाते हैं। इंजीनियर मकान का नक्शा बना के दे देगा, समझ लेगा, समझाए देगा, लेकिन उससे कहो मकान खड़ा करो, बनाओ, तो एक पला भी नहीं उठेगा। तो उसके लिए कौन चाहिए? प्रैक्टिकल पार्टी। तो वो मकान बनाने वाले मिस्त्रियों को भी छोड़ना नहीं है क्या? जैसे बाबा ने बोला, रानी मक्खी निकलेगी, वो क्या बनाती है, वो संगठन का किला बनाती है, छत्ता बनाती है। एक रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झुंड चला जाता है नया किला बनाने के लिए। तो यह है प्योरिटी की पावर। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनमें ज्यादा व्यभिचार होता है कि जो मजदूर होते हैं उनमें ज्यादा व्यभिचार होता है? बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े अय्याश होते हैं। तो कौन चाहिए नए मकान को बनाने के लिए? है प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। प्रैक्टिकल बिना प्योरिटी की नहीं हो सकता। तो उन मिस्त्रियों को भी छोड़ना नहीं है, उनका भी आह्वान करना, आओ भाई मकान बनाओ आगे। तो मिस्त्रियों को भी समझाना है कि अब मौत सामने खड़ा है, अब टाइम बिल्कुल रहा नहीं। बाप को याद करो तो तुमको वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर के लिए पूरी कर रहे हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। क्या कहा मिस्त्रियों को, क्या समझाओ? बोझ सी बात पड़े हुए हो कहीं कि हमको साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे। बेचारों की बुद्धि में पूरा हिसाब किताब तो बैठता नहीं है, पूरा ज्ञान तो बुद्धि में धसता नहीं है। वो क्या कहते हैं कि साक्षात्कार कराओ कराओ तब हम मानेंगे। हमें बाबा साक्षात्कार कराए तो हम मान जाएंगे। तो उनसे कहो योग लगाने से बाप तुमको साक्षात्कार करा देगा। करा सकते हैं, बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीबी अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल अपना कल्याण करेंगे। उनके लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग लगा पड़ा है, तो उनको तो उस कल्याण की दरकार है ही नहीं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं वो अंत में आएंगे। क्या कहा? अभी नहीं आवेंगे नामी ग्रामी सन्यासी, वो भी अंत में आवेंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही उठाने वाले हैं और वो ही उठाते हैं। गरीब अब लाए कुब्जाएं भीलनिया अहिल्याएं जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, उनको भगवान बाप आकर के उठाते हैं। और जिनकी दुनिया में पूछ है, दुनिया में जिनकी पूछ है उनको भगवान नहीं पूछता। तो बाप साधारण तन में आता है। साधारण से काम लेना है तो कौन से तन में आना पड़े? साधारण तन में आना पड़े। गरीब में आते हैं, बहुत गरीब में भी नहीं आते। बहुत गरीब हो तो साधारण भी नहीं कहा जाएगा। साधारण माने सामान्य, न ज्यादा ऊंचा और न ज्यादा नीचा। अगर ये भी गरीब होता तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। गरीब इतने की संभाल कैसे करते? इतने माना हाँ, दादा लेखराज के तन में ना आते, कोई गरीब के तन में आते तो 300-400 की जो बारात पाली वर्षों तक, 3 दिन के लिए बारात आती है तो लपू लपू पड़ जाती है। और वहाँ 300-400 की बारात और वर्षों उसको खिलाया पिलाया, तो उसके लिए ये कोई कार्य गरीब का नहीं। गरीब इतने की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी हुई है। साधारण ही हो जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे, इनके साथ साथ हो और भी बहुत बलि चढ़ करके वापस, हाँ बलि चढ़ करके वारिस बन गए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। तो जब अनेक बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से भी आए तो भी क्या करेंगे? उस समय दूसरे दूसरे रास्ते नहीं निकालना,
क्या करेंगे? उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगा।